नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की प्रेम और अनुग्रह में बलवंत हो रहे हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि यदि हम परमेश्वर से और उसके कार्यों से लजाएंगे तो वह भी हमसे और हमारे कार्यों से लजाएंगे। इसलिए हम सबके लिए अवसर है कि हम उसके निकटता में आए और उससे प्रेम करें। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से आरंभ करेंगे और इस अध्याय में भी हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देखेंगे। आज हमारा अध्ययन मरकुस रचित सुसमाचार के अध्याय 9 से है और यहाँ भी यीशु के रूपांतरण का वृत्तांत है। यह वृत्तांत पहले तीनों सुसमाचारों में है। मरकुस हमें बताता है कि इसी समय जब पर्वत पर यीशु के रूपांतरण की घटना घट रही थी तो नीचे तराई में शिष्य उस युवक में से दुष्ट आत्मा निकालने में विफल रहे। यहाँ यीशु एक बार और अपनी मृत्यु की घोषणा करता है और शिष्य आपस में विवाद करते हैं कि कौन सबसे बड़ा पद पाएगा। यीशु उनके इस विभाजन की मानसिकता के लिए उन्हें झिड़कता है और उन्हें नरक के विरुद्ध सतर्क करता है। यह एक और विस्फोटक अध्याय है जो हम इस कर्मठता के सुसमाचार में देखते हैं। तो मित्रों, समानता मार्कुस अपने वृत्तांत को संक्षेप में ही रखता है, परंतु रूपांतरण का विवरण वह दूसरों से अधिक सविस्तार लिखता है। उसने इस पर क्यों अधिक बल दिया, यह एक रुचिकर विषय है। हमारी समझ में रूपांतर मसीह के परिपूर्ण मनुष्यत्व को दर्शाता है। वह उसके ईश्वरत्व के निमित्त नहीं था, परंतु यूहन्ना जो प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को दर्शाता है रूपांतरण की घटना को अनदेखा करता है। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि मत्ती के अध्याय 16 के अंतिम पद में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। इसकी अनेक व्याख्याएं हैं, परंतु मेरी समझ में यीशु ने निश्चय ही अपने रूपांतरण के विषय में यह कहा था। पतरस और यूहन्ना वहां उपस्थित थे और वे इसकी गवाही देते थे। पत्रस ने अपने दूसरे पत्र अध्याय 1:16-18 पद में कहा, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आती सुनी। मित्रों, वे हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और आगमन की गवाही देते हैं। वह किस समय की चर्चा कर रहा है, यीशु के रूपांतरण की। मार्कुस 9 उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। इस घटना का यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से पूर्व घटने का कारण मेरी समझ में यह है कि वह क्रूस पर चढ़े या न चढ़े, राज्य उसके हाथ में ही है। वह पृथ्वी से उठकर सीधा स्वर्ग में जा सकता था और फिर भी संपूर्ण जगत का शासक होता, परंतु ऐसा करने पर वह आपको मुक्त नहीं करा सकता था, वह मुझे मुक्ति नहीं दे सकता था। यह अति महत्वपूर्ण विचार है। मित्रों, मरकुस 9 के 2 में हम पढ़ते हैं, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया। अब एक प्रश्न है, वह इन तीन शिष्यों को साथ क्यों ले गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वे उसके अति प्रिय शिष्य थे, परंतु कारण यह नहीं था। यह भी नहीं माना जाए कि वे अन्यों से अधिक महत्व रखते थे। मेरे विचार में तो वे अन्य शिष्यों की तुलना में सबसे अधिक दुर्बल थे और यीशु को उन्हें अपने साथ शिशुओं की नाई ले जाना पड़ा, अन्यथा वे जाते ही नहीं। मैंने एक दिन सड़क पर एक माँ को देखा जिसके साथ तीन बच्चे थे। सबसे छोटे को उसने गोद में उठा रखा था और एक का वह हाथ थामे चल रही थी, तीसरा बच्चा अपने आप ही माँ के पीछे पीछे चल रहा था। उसे बार बार रुकना पड़ता था कि तीसरा बच्चा उसके साथ हो ले। मैं उन्हें देख रहा था कि वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने सोचा कि वह बच्चा चलने में बहुत समय लगा रहा है, परंतु तभी मुझे यह बोध हुआ कि जिस बच्चे को उसने गोद में लिया हुआ है वह तो चलने लायक ही नहीं है। मेरे विचार में पतरस, याकूब और यूहन्ना ऐसे ही थे। यद्यपि वे विशेष प्रतीत होते हैं, वे शिष्यों की नाई ही थे, उन्हें लेकर जाना पड़ता था। अतः यीशु उन्हें रूपांतरण में साथ ले गया। मित्रों, पतरस कहता है कि वे उसके प्रताप के प्रत्यक्ष गवाह थे। यही वह प्रतापी मसीह है जो एक दिन इस पृथ्वी पर फिर आएगा। मित्रों, यह वही रूप है जो एक दिन आपको और मुझे प्रदान किया जाएगा। पहला यूहन्ना 3:2 में हमें बताया गया है कि उसके स्वरूप कैसे होंगे। आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना कहता है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, यूहन्ना 1:14। रूपांतरण, जिस यूनानी शब्द का अनुवाद है, उसका अर्थ है रूप परिवर्तन। यह कोई बाहरी चमक नहीं थी, यह दैहिक ज्योति थी। मेरे विचार में आदम और हवा का यही रूप था, दैहिक ज्योति से पूर्ण आकृति। अतः रूपांतरण यीशु के परिपूर्ण मनुष्यत्व को दर्शाता है, ईश्वरत्व को नहीं। मार्कुस 9:3 में आगे लिखा है, और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। उसके वस्त्र श्वेत हो गए थे, कल्पना से परे श्वेत, क्योंकि ज्योति भीतर से प्रकाशमान हो रही थी। ऐसी उज्जवलता आज का कोई भी रसायन नहीं ला सकता था। मार्कुस 9:4 में लिखा है, और उन्हें मूसा के साथ इलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इलिया भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधि था और मूसा व्यवस्था का, और लिखा है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों ने यीशु की मृत्यु की गवाही दी है। लुका अपने सुसमाचार में उल्लेख करता है कि वे यीशु की मृत्यु के बारे में विचार कर रहे थे। मित्रों, मूसा यीशु के बारे में जानता था। इब्रानियों के पत्र 11:26 में मूसा के बारे में लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा जानता था कि वह आने वाला है। सब भविष्यवक्ताओं ने उसके कष्ट उठाने और महिमा के बारे में कहा है। तब हम आगे मार्कुस 9:5-6 में पढ़ते हैं, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलिया के लिए, क्योंकि वह ना जानता था कि वह क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। पतरस में यह गुण था कि जब वह नहीं जानता था कि क्या कहा जाए, तभी वह कुछ न कुछ अवश्य कहता था। मित्रों, हम मार्कुस 9:7 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। मित्रों, संपूर्ण केंद्र प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित था। यीशु जो भी कहता वही अंतिम वचन था। हम मूसा और एलिया को यीशु के बराबर नहीं रख सकते हैं। तब हम मार्कुस 9:8 आगे पढ़ते हैं, तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। यीशु को छोड़ अपने साथ किसी को ना देखा, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण और वजनी शब्द है। यह हर एक विश्वासी का अनुभव होना है। मार्कुस 9:9 लिखा है, पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। मित्रों, मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान इस घटना से जुड़ा होना चाहिए। रूपांतरण हमारे सामने एक लक्ष्य स्थापित करता है जो केवल क्रूस पर मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान से प्राप्त होता है। आपको ध्यान रखना है कि मसीह यीशु अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान को साथ व्यक्त करता है। हम मार्कुस 9:10 में पढ़ते हैं, उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। वे यीशु के पुनरुत्थान से पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ थे। समाचार सुनकर वे कब्र की ओर दौड़े, परंतु उन्हें जीवित मुक्तिदाता के दर्शन की आशा नहीं थी। आप कब्रिस्तान में जीवित मनुष्य को देखने नहीं जाते हैं, आप तो वहां मुर्दे को श्रद्धा अर्पण करने के लिए जाते हैं। मरकुस 9 उसके 11 से 13 पद में लिखा है, और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उन्हें उत्तर दिया कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके विषय में लिखा है, उन्होंने तो जो कुछ चाहा उसके साथ किया। हमारे प्रभु ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि मसीह से पहले एलिया आया है, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा था। यूहन्ना ही एलिया की आत्मा में था। यदि यीशु को मसीहा स्वीकार किया गया है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में भविष्यवाणी पूरी होती है। अब क्योंकि उन्होंने यीशु को मसीहा स्वीकार नहीं किया है, तो उससे पूर्व एलिया के आगमन की भविष्यवाणी उसके दूसरे आगमन पर फिर से पूरी होगी। मित्रों, पर्वत के इस महिमामय दृश्य के बाद हम तलहटी में उपस्थित विफल शिष्यों को देखते हैं, और इसके बाद मरकुस 9 उसके 14 से 18 पद में आगे पढ़ते हैं। और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है, और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं, और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है, और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दे, परंतु वह निकाल न सके। मित्रों, यह आज के मसीही जनों का चित्रण है। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के साथ अपनी महिमामय देह में है, उसके शिष्य उसके साथ हैं, अधिकांश कलीसियाएं भी वहां हैं, मूसा और एलिया भी वहां हैं। रूपांतरण का पर्वत स्वर्ग का दृश्य प्रदान करता है। यह युवक इस पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभागी पृथ्वी को देखिए और यहाँ की समस्याओं को भी देखिए। यदि हम ऊपर जाकर इस पृथ्वी को देखें जैसे परमेश्वर देखता है और जैसे स्वर्गदूत देखते हैं, तो हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि इस पृथ्वी पर मनुष्य पागल हो गया है। उसके व्यवहार से वह दुष्ट आत्मा ग्रस्त प्रतीत होता है। दुख की बात तो यह है कि वह युवक शिष्यों के पास लाया गया और वे कुछ न कर पाए। मित्रों, आज की त्रासदी यह है कि संसार की आवश्यकताओं के सामने कलीसिया भी असहाय है। कलीसिया अपनी सेवा जी जान से कर रही है, परंतु संसार आलोचना करते हुए कहता है कि कलीसिया को अधिक सेवा करना है। समाज सेवा से अधिक हमें आज इस दुष्ट आत्मा ग्रस्त युवक को एक मुक्तिदाता देना है, जो चंगा करके परमेश्वर के साथ सही संबंधों में लाए। परंतु दुख की बात है कि वे नहीं कर पाए। शिष्य विफल हो गए, हम भी विफल हो गए हैं। इस कारण प्रभु यीशु कहता है मरकुस 9 उसके 19 पद में, यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। खूब कहा, उसे मेरे पास लाओ। हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु भटके हुओं को ईश्वर के पास नहीं लाते हैं। मरकुस 9 20 से 22 पद, तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा कि इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। मित्रों, इस युवक की अवस्था भी वैसी ही है जैसे उस व्यक्ति की थी जो कब्रों में रहता था। अंतर केवल समझ का था। समय बीतने पर यह युवक भी उसी दशा में होता। उसका पिता प्रभु यीशु के सामने विलख पड़ता है। यदि हम भी ऐसा ही करें तो यीशु अवश्य ही हमारे भी सहायता करेगा। मार्कुस 9 उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहां मुख्य बात यह है कि यीशु ने उसके पिता से विश्वास रखने को कहा। क्या पुत्र की इस दशा का उत्तरदायी पिता था? यहां यह प्रश्न नहीं है, यदि तू कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु सब कुछ कर सकता है। यहां मुख्य बात है, यदि तू कर सकता है तो विश्वास कर। प्रभु यीशु ने उसके पिता से कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9 उसके 24 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यह पिता की विश्वास भरी करुण याचना है। मरकुस 9 उसके 25 से 27 पद में हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत से लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। क्या वह मर गया था जिसे यीशु ने हाथ पकड़कर जिलाया? मेरे विचार में जी हां, वह मर गया था। परंतु मैं इस पर समय व्यतीत नहीं करूंगा। मरकुस 9 उसके 28 और 29 पद में हम पढ़ते हैं, जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। मित्रों, मेरे विचार में यहां यीशु प्रार्थना पर बल दे रहा था। मेरे मित्रों, आज कलीसिया में सामर्थ नहीं है क्योंकि प्रार्थना की कमी उसमें पाई जाती है। मरकुस 9 उसके 30 और 31 पद में हम पढ़ते हैं, फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे और वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। मित्रों, ध्यान दीजिए कि यीशु अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान को एक साथ व्यक्त करते हैं। मरकुस 9 उसके 32 पद में लिखा है, पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। वे संभवतः पुनरुत्थान की बात को समझे नहीं थे। आप अवश्य सोचेंगे कि उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। यह बड़ी विचित्र बात है कि यीशु ने अभी अपनी मृत्यु की चर्चा की और वे राज्य में सबसे बड़े पद को ग्रहण करने का विवाद कर रहे थे। यह पहला अवसर नहीं था कि यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा की हो, परंतु वे समझने में असमर्थ थे। मरकुस 9 उसके 33 से 35 पद में आगे हम पढ़ते हैं, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। मित्रों, आत्मिक महानता का यह एक बहुत गहरा सिद्धांत है। मरकुस 9 उसके 36 और 37 में हम पढ़ते हैं, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मित्रों, यीशु एक बच्चे के उदाहरण से उन्हें समझाते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि उसने बच्चे को गोद में उठाया था। अब हम मरकुस 9 उसके 38 से 41 पद में पढ़ते हैं, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो कोई हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। मित्रों, यूहन्ना को नारी स्वभाव का समझा जाता था, परंतु यहां उसका उग्र रूप देखिए। यीशु पंथ निष्ठा के विरोध था। यीशु ने एकता का आधार बताया, मेरे नाम में। यीशु के नाम में किए गए काम को उसका कोई भी अनुयायी तुच्छ न समझे। आज यीशु शब्द का उपयोग अनेकों द्वारा स्वच्छता से किया जाता है, परंतु वह वास्तव में उसके नाम में नहीं होता है। मित्रों, पद 42 में वह फिर उसी बच्चे के पास आता है जिसे उसने गोद में उठाया था। यह उसका कोमल व्यवहार था, परंतु बच्चों को ठोकर खिलाने वाले के लिए उसके वचन अति कठोर हैं। मार्कुस 9 उसके 42 पद में लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। आगे वह यह भी कहता है, मार्कुस 9 के 43 में, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि नरक के बारे में कौन कह रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि यीशु नम्र स्वभाव का है। मित्रों, एकमात्र वही था जिसने नरक के बारे में जानकारी दी। पौलुस ने नरक के विषय कुछ नहीं कहा, परंतु यीशु ने कहा और उचित होगा कि हम ध्यान से सुने। उसने कहा कि नरक एक स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि नरक एक स्थान है। यीशु हाथ, पैर और आंख के बारे में कह रहा था। मार्कुस 9 उसके 45 और 47 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, 47 पद में, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। यह आंख ही तो थी जिसने हवा को दिखाया कि उस वृक्ष का फल खाने योग्य दिखता है। मार्कुस 9 उसके 49 और 50 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे तो उसे किस से स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। मित्रों, यह एक विचित्र बात है, परंतु कहने का अर्थ यह है कि दोनों ही शोधन के साधन हैं। आग मैल को जलाकर साफ करती है और नमक अशुद्धता और संक्रमण को मारता है तथा दूर रखता है। यदि हम में नमक है तो परमेश्वर के वचन का शोधन कार्य तो वह शोधन करके शांति लाता है। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन आपने अवश्य ही परमेश्वर के वचन में से आशीष को प्राप्त किया है, क्योंकि आज हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर एक बच्चे के द्वारा हमें उदाहरण देते हैं और वे चाहते हैं कि हम भी अपना हृदय उस बच्चे के समान बनाएं ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। हमें नर के बारे में भी बताते हैं कि यदि हमारे पास में हाथ पैर हैं, हमारे मुख हैं और आंख हैं और हम परमेश्वर की निकटता में नहीं हैं, तो निश्चय ही हम नरक में नाश किए जाएंगे। अब प्रश्न यह है कि आप कौन से स्थान में जाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पसंद करेंगे या नरक में? आज भी आपके पास और मेरे पास मौका है कि हम सब परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, उसके पास आए और अपने पापों को मानकर उससे फिरें, ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आ सके। मित्रों, आइए फिर से एक बार हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिताजी कि आप निरंतर इस वचन के द्वारा बातचीत कीजिए, हमें नम्र और दीन बनाइए। हमारे अंदर जो भी बुराइयां पाई जाती है उसे आप हमारे अंदर से निकाल दीजिए। हम पर अनुग्रह कीजिए ताकि हम भी हाथ पैर नाक मुंह आंख होते हुए आपके राज्य में प्रवेश करें, हम नरक से बचाए जाएं, ऐसा अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले मन का दीप जला, दीप जला ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले